بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 7 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بھٹکا ہوا راہی ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 114. آدھی رات کو وہ ڈرائنگ روم میں اونگ رہا تھا جب مختارہ نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا. بیٹا مجھے ذرا چھوڑ آؤ, بچی کو ملک صاحب صبح خود پہنچا دیں گے. مختارہ نے شراب کے نشے میں ڈگمگاتے ہوئے اور سلام سے کہا. اس کا جی تو یہی چاہتا تھا کہ اس حرافہ کا منہ نوچ لے, لیکن حالات نے اسے منافقت اور مصالحت کے ایسے ہتھیاروں سے لیس کر دیا تھا کہ اب اس کے اپنے جذبات کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی تھی. بی بی خوش تو ہو نا, اس نے بے شرموں کی طرح مسکراتے ہوئے کہا. بیٹا کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں, تو نے تو ہم غریبوں کی قسمت کا بند دروازہ کھول دیا. مختارہ بھائی کے انگ انگ سے خوشی کے فوارے پھوٹ رہے تھے. اس نے براہ راست ملک کو قابو کر لیا تھا. وہ جانتی تھی کہ اب اس شہر میں کسی کی جرات نہیں کہ اس کے سامنے سر اٹھا کر چلے. ملک کے ذریعے وہ بازار میں اپنے حاسدوں کا ناطقہ بند کر سکتی تھی. گاڑی میں ارسلان اسے گھر تک چھوڑنے آیا تھا. سارے راستے اس نے اپنے جذبات کو چھپائے رکھا تھا اور ہنس ہنس کر مختارہ سے باتیں کرتا آیا تھا. اس نے مختارہ کو اپنے دلی جذبات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی. روانگی پر اس نے مختارہ کو خبردار کرتے ہوئے کہہ دیا تھا, بی بی ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس دروازے تک تمہیں میں نے پہنچایا ہے. اختر نے تمہیں ملک صاحب کی ہوا نہیں لگنے دی تھی, کہیں اپنے اس رابطے کو درمیان سے نہ نکال دینا. جس پل سے تم گزر کر ملک صاحب کے گھر پہنچی ہو, اس پل کے بغیر دریا عبور نہیں کر سکو گی. صفحہ نمبر 115. ارسلان باؤ, ہم خاندانی کنجر ہیں, ایسے گرے پڑے بازاری لوگ نہیں کہ کسی محسن کو بھی یاد نہ رکھیں. تمہارے احترام میں کبھی کمی نہیں آئے گی, بس ہمارا کام چلتا رہے تمہارا بھی چلتا رہے گا. مختارہ بھائی نے اپنے مخصوص کاروباری لہجے میں اس کی بات کا ایک جواب دے کر اسے ہزار معنی سمجھا دیے تھے. یہاں سے وہ سیدھا ملک صاحب کے ہی گھر آیا تھا اور ڈرائنگ روم میں ہی سو گیا. صبح وہ دیر گئے تک سوتا رہا, کسی نے اسے جگایا نہیں. جب وہ بیدار ہوا تو ڈرائنگ روم کے ریشمی پردوں پر دھوپ چمک رہی تھی. رات کے سارے واقعات کی فلم ایک ایک کی اس کے دماغ میں چلنے لگی. اچانک ہی ڈرائنگ روم سے ملک کا دروازہ کھلا اور ملک صاحب اندر چلے آئے. وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھے. کیا حال ہے بیٹا, انہوں نے ایسے دریافت کیا جیسے وہ معمول کے مطابق بات کیا کرتے تھے, جیسے رات اس گھر پر اتری ہی نہیں تھی. بھائی تم تو بڑے کام کے آدمی ہو, ملک صاحب نے اپنی بائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا. وہ اختر تو سالہ جھک ہی مارتا رہا. سچ بیٹا, دل خوش کر دیا تم نے, واقعی تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے. تم تو جانتے ہو آج کل میں کتنی زیادہ ٹینشن کا شکار ہوں. الیکشن سر پر ہیں اور ہر روز دو تین میٹنگوں میں آنا جانا. بھائی میں تو سچی بات ہے سیاست سے تنگ آ گیا ہوں. یہ تو تم نوجوانوں کی خدمت کا جذبہ ہے جس نے ابھی تک مجھے قائم رکھا ہے. ہاں اسے تھوڑی دیر بعد گھر پہنچا آنا, کل شام تم میرے ساتھ بھارتی سفارت خانے کی دعوت پر جا رہے ہو. انہوں نے ارسلان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا. ارسلان میاں, تم انقلابی فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری ہو اور اب تمہارا تعارف بین الاقوامی حلقوں میں بھی ہونا چاہیے. میں تمہیں سیاست میں اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں, بڑی رازداری کے لہجے میں انہوں نے ارسلان کے نزدیک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. شکریہ ملک صاحب, آپ نے مجھے کسی قابل جانا, ارسلان نے انتہائی منافقت کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, تم یہ رکھ لو, میں نے ان لوگوں کو فارغ کر دیا ہے. پھر بھی اپنے ہاتھ سے کچھ بخشش دے دینا, اس طرح یہ لوگ دب کر رہتے ہیں. ملک نے آنکھ دباتے ہوئے نوٹوں کا ایک بنڈل ارسلان کو تھما دیا. صفحہ نمبر 116. کل ادھر گھر پر ہی آ جانا, یہیں سے شام کو اکٹھے نکل چلیں گے, کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ارسلان سے کہا. شکریہ ملک صاحب, بہت شکریہ, اس نے نوٹوں کا بنڈل اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا. اس گھر کی کوئی چیز اس کے لیے اجنبی نہیں تھی. تھوڑی دیر بعد غسل خانے کا رخ کر رہا تھا, جب وہ نہا دھو کر باہر نکلا تو ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر مسز ملک اس کی منتظر تھی. بے ساختہ اس کا ہاتھ ماتھے تک اٹھ گیا. شاباش, تم میں ایک اچھا سیاستدان بننے کی اہلیت موجود ہے, کم از کم تم ایک کامیاب انسان ضرور بن سکتے ہو. ارسلان, جس شخص کو اپنے دلی جذبات چھپانے اور منافقت سے بات کرنے کا ڈھنگ آ جائے, کامیابی اور کامرانی کے دروازے ایک ایک کر کے اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں. شاباش, اسی طرح گدھے کو بے وقوف بناتے رہو. ایک دن ایسا آ جائے گا جب یہ تمہارے لیے وہ کچھ کرے گا جو کچھ اب تم اس کے لیے کر رہے ہو. ہاں ناشتہ میرے ساتھ کرنا, ذرا اس کتیا کی خبر لے آؤ. मिसेस मलिक की मुस्कुराहट बहुत गहरी और जानलेवा हो रही थी। सर्दियों की रोशन सुबह की सारी ताजगी इसके बदन की सनोलाट में सिमट आई थी। उसका सांवला चेहरा निखर कर गहरे सुर्ख रंग के देसी गुलाब की सूरत अख्तियार कर गया था। मुस्कुराने से इसकी आंखें सारे चेहरे पर फैल जाती थी। इन आंखों में इसरार की तहें इतनी गहरी थी कि अरसलान कोई अंदाजा कायम नहीं कर सकता था। शुक्रिया मिसेस मलिक, उसने नाजनीन वाले कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। एक मिनट ठहरो, मिसेस मलिक ने उसे हाथ के इशारे से रोका। मेरी नसीहत याद रखना, अपने दिली जज्बात का इजहार कभी ना करना। इस औरत को यह एहसास ना होने देना कि तुम्हें इसके रवैये से तकलीफ पहुंची है, कभी नहीं। और हाँ, तुम मुझे नजमा कह सकते हो। वो सिगरेट का कश लगाती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। शुक्रिया, बेख्तियार अरसलान के मुंह से निकला। सफा नंबर 117। जब वो नाजनीन वाले कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो नाजनीन आरामदेह बिस्तर से टेक लगाए टीवी पर फिल्म देख रही थी। अरसलान के अंदर दाखिल होते उसने रिमोट से टीवी ऑफ किया और ऐसी बेकरारी से उठकर इसे लिपटी कि अरसलान भूखा रह गया। इससे लिपटी 2-3 मिनट तक तस्वे भारती अपनी किस्मत को कोसती रही। उसने अरसलान से कहा कि उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मलिक साहब इस कमाश के आदमी हैं, वरना वो कभी अपनी माँ के साथ यहाँ ना आती। अरसलान बाबू, अगर मैं जरा सी भी मजामत करती तो ये शख्स हमें तबाह करके रख देता। तुम तो जानते ही हो इसके कितने लंबे हाथ हैं। नाजनीन, बेवकूफ ना बनो, दीवारों के भी कान होते हैं। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे कभी बेवफाई नहीं करोगी। तुम भी मेरी तरह मजबूर हो। मैं तो तुम्हें ये बताने वाला था कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे हाथ सोने की चिड़िया लग गई है। अगर हम दोनों मिलकर चलें तो करोड़ों की आसामी हाथ आ जाएगी। बस जरा होशियारी की जरूरत है। तुमने देख लिया, मलिक साहब मेरी हर बात मानते हैं। इसका जवाब नाजनीन के लिए बिल्कुल खिलाफ तवक्को था। एक लम्हे के लिए तो ठिटक कर ही रह गई। शायद वो फैसला कर रही थी कि जो कुछ इसके कानों ने सुना है उस पर यकीन करे या ना करे। फिर इसने सोचा कि मलिक साहब लाख होशियार, चालाक, उबार, रसूख सही और सलाम भी कुछ कम नहीं, और ऐन मुमकिन है कि वो इसकी मदद से मलिक पर हाथ साफ करने का प्रोग्राम बना रहा हो। गोया अब वो दोनों एक दूसरे की जरूरत भी बन गए थे। अरसलान ने इसकी हरीसाना फितरत को बड़े अहम तरीके से एक्सप्लाइट किया था। अरसलान, तुम मेरी तवक्को से बढ़कर अजीम निकले हो, इसने अरसलान के साथ ही पलंग पर ढेर होते हुए कहा। सफा नंबर 118। अभी नहीं, इस काम के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। हमें हर कदम एहतियात से उठाना है। तुम फिल्म देखो, मैं अंदर दूसरी फिल्म देखकर अभी आया। किसी चीज की जरूरत हो बैल बजाकर बैरे से तलब कर लेना। उसने आहिस्तगी से खुद को नाजनीन से अलग करते हुए इसके कानों में सरगोशी की। ओके, नाजनीन ने बेहूदा सी हरकत करते हुए इसे जाने की इजाजत दे दी और एक मरतबा फिर इसने वीसीआर और टीवी के स्विच ऑन कर लिए थे। थोड़ी देर बाद वो मिसेस नजमा के साथ नाश्ते की मेज पर मौजूद था। मिसेस मलिक ने उसे अपने हाथों से टोस्ट पर मक्खन लगा कर दिया था। कल तुम मलिक के साथ भारतीय सिफारतखाने में जाओगे, अपने कान और आंखें खुली रखना लेकिन जबान बंद। याद रखना, इस तकरीब के पाकिस्तानी मेहमानों में इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल होंगे। मैं नहीं चाहती कि इब्तिदा ही में इस हवाले से तुम्हारी कोई फाइल खुल जाए। मिसेस मलिक ने वाकई उसे बहुत कीमती नसीहत की थी। नाजनीन को छोड़ाओ, लेकिन आज ही उसे बिजनेस की बात ना कर लेना। अभी कुछ दिन गुजरने दो। फल कच्चा भी इतना ही नुकसानदेह है जितना ज्यादा पका हुआ। अगर तुम एतदाल के साथ चलते रहो तो अपना मकसद पा लोगे। और सलान को बच्चों की तरह जिंदगी के असरारो रमूर से आगाह कर रही थी। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो बिला तकल्लुफ मेरे पास चले आना, उसने दमे रुखसत अरसलान से कहा था। नाजनीन को अरसलान खुद छोड़ने आया और गाड़ी में सारे रास्ते से यही बावर करवाता रहा था कि दोनों अगर चाहें तो मिलकर बहुत माल कमा सकते हैं। अगर इनमें से किसी ने दूसरे के साथ धोखा करके उल्लू सीधा करने की कोशिश की तो दोनों मारे जाएंगे। नाजनीन वाकई खानदानी कंजरी थी। वो अब अरसलान का मतलब समझने लगी थी। यूं भी वो जानती थी कि मजबूत चारे के बगैर वो शिकार कैसे खेलेगी। सफा नंबर 119, इंटेलिजेंस। उसी रोज शाम को दोनों सिफारतखाने की तकरीब में जा रहे थे। मिसेस मलिक ने एक कल्चर सोसाइटी के प्रोग्राम में शिरकत करनी थी। इसने पहले ही मलिक साहब के सामने अपनी मजबूरी बयान कर दी थी। यूं भी अब अख्तर का कोई पत्ता नहीं चल रहा था और मलिक साहब ने अरसलान को ही अपनी बैसाखियां बनाना था। मलिक साहब की गाड़ी से सिफारतखाने के लाउंज में पार्क हुई तो एक बावर्दी मुलाजिम ने आगे बढ़कर इसका दरवाजा खोला اور ان کی رہنمائی اس ہال کمرے کی طرف کی جہاں استقبالیہ ترتیب دیا گیا تھا. ڈرائیور تو وہیں رک گیا, دونوں ہال کمرے کی طرف چل دیے. ملک صاحب کی شکل پر نظر پڑتے ہی ایک خوبصورت لڑکی نے مسکراتے ہوئے ہال کا دروازہ کھول دیا. یہ لڑکیاں بھارت کے مخصوص لباسوں میں ملبوس مہمانوں کا استقبال کر رہی تھیں. ہال کمرے کا دروازہ کھلتے ہی خوشبو اور رنگ و نور کا ایک سیلاب اس کی آنکھوں نے امٹتے ہوئے دیکھا. یہاں سینکڑوں مرد اور عورتیں جمع تھیں, ان میں ملکی اور غیر ملکی دونوں قسم کے لوگ موجود تھے. یوں لگتا تھا جیسے جہاں وہ آئے ہیں وہ کوئی اور ہی دنیا ہے. عورتیں اور مرد ایک دوسرے سے چپکے مختلف کونوں میں کرسیاں سنبھالے بیٹھے تھے. متعدد بیرے اپنے ہاتھوں میں مشروبات کی تشتریاں تھامے بھاگے بھاگے پھر رہے تھے. صفحہ نمبر 120. شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کے ہاتھ میں جام نہ ہو. خصوصاً ملکی مہمان مفت کی شرح پر یوں ٹوٹ کر گرتے تھے جیسے انہیں دوبارہ زندگی میں یہ کچھ دیکھنا نصیب ہی نہ ہوگا. ہال کے ایک کونے میں بنی اسٹیج پر کچھ سازندے بھارتی گیتوں کی دھنیں بجا رہے تھے اور بھارتی سندریاں جوڑوں اور ہاتھوں میں گجرے سجائے آنے والوں کی آرتی اتار رہی تھی. انہوں نے بہت سے مہمانوں کے ماتھے پر تلک بھی سجا دیے تھے. روپہلی ساڑیوں سے پھیلتے ان کے لچکیلے جسموں سے اٹھنے والی خوشبو کی لپٹیں ہونٹوں اور آنکھوں میں ناشتی مسکراہٹ نے مہمانوں کے ایمان ڈگمگا دیے تھے. ہر کوئی ایسی کسی بھی سندری کی چند منٹ کی کمپنی کے لیے باولا ہوا جاتا تھا. سفارت خانے کا مردانہ عملہ ہر آنے والے مہمان کا سواگت جی جان سے کر رہا تھا. ملکی نامور طوائفیں جب اب مقینہ فلم اسٹار کہلاتی تھی یہاں بطور خاص مدعو کی گئی تھی. چوٹی کی سرمایہ دار تاجر سیاستدان وکلا ڈپلومیٹس اس مجلس میں موجود تھے. ملکی مہمانوں خصوصاً سفارت خانے کی خواتینوں کے گرد پتنگوں کی طرح بھن بنا رہے تھے. ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ دوسرے سے بڑھ چڑھ کر غیر ملکیوں کی توجہ کا مرکز بنے. ملک صاحب اور ارسلان نے شراب کے بجائے سافٹ ڈرنکس لیے تھے. ملک کی یہ مجبوری تھی کہ وہ اس مجلس میں شراب کے جام کو چھو کر اخبار نویسوں کے لیے کوئی کہانی نہیں چھوڑ سکتا تھا. الیکشن نزدیک آ رہے تھے, اسے خود پر جبر کر کے مکمل منافقت کا مظاہرہ کرنا تھا. بصورت دیگر ان حالات میں کوئی معمولی سی خبر بھی اس کا سارا سیاسی کریئر تباہ کر سکتی تھی. بھارتی سفیر ملک کی شکل پر نظر پڑتے بھاگتا ہوا اس طرف آیا تھا. ہیلو ملک صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اس نے ملک سے بے تکلفی سے معانقہ کیا. دونوں ایک دوسرے سے خاصے بے تکلف نظر آ رہے تھے. ترپاٹھی صاحب, یہ ہیں مسٹر ارسلان. ملک نے خیر خیریت سے نمٹنے کے بعد ارسلان کے سے تعارف کروایا, انقلابی طلبہ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری. اوہ بھائی واہ, مزہ آ گیا. واہ ملک صاحب, کمال کے آدمی ہیں آپ. میری تو دلی مراد خواہش تھی کہ ہمارے نوجوانوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہو. صفحہ نمبر 121. یہ تو ہمارا سوبھاگیہ ہے جو ارسلان صاحب تشریف لائے. مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ارسلان صاحب. آپ ایسے ریبلر روشن دماغ لوگ اس برصغیر کی واحد امید ہیں. میں نے آپ کی سرکار کو متعدد مرتبہ پروپوزل دی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے زیادہ سے زیادہ ڈیلیگیشن ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کریں. اس طرح انہیں قریب آنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع تو ملے گا. کچھ عجب نہیں, ملک صاحب کے جو کام ہم لوگ نہیں کر سکے وہ یہ نوجوان کر گزرے. نوجوان ہماری طرح تنگ نظر نہیں ہوتے ملک صاحب. یہ نفرت اور تعصب جو ہماری نسل نے انہیں ورثے میں دیا ہے, اس گروتھ کی آندھی کے سامنے ان کے عزائم ہی دیوار کھڑی کر کے ایک دوسرے کو قریب لا سکتے ہیں. ترپاٹھی نے ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنی باتیں کہہ دی تھی. اسے ارسلان کی اچانک آمد سے بہت خوشی ہوئی تھی. بڑی بے تکلفی سے وہ ارسلان کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف لے گیا. اس اثنا میں ملک صاحب ایک غیر ملکی خاتون کا طواف کرنے لگے تھے. ترپاٹھی اسے لے کر ایک کونے میں موجود ایک بھارتی سندری کے سامنے جا کھڑا ہوا. یہ میری بیٹی کانتا ہے اور کانتا بیٹی یہ ہے انقلابی اسٹوڈنٹ کے جنرل سیکرٹری مسٹر ارسلان. اس نے دونوں کا تعارف کروایا. ہیلو کہہ کر کانتا نے اپنے ماتھے پر آئے بال جھٹکے سے پیچھے کی طرف گراتے ہوئے ارسلان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسے اپنے خون کی گردش بڑھتی محسوس ہونے لگی. ہیلو کہہ کر اس نے کانتا کا ہاتھ تھاما اور ایک برقی لہر اس کے سارے بدن میں سرایت کر گئی. آپ لوگ باتیں کریں, میں ذرا دوسرے مہمانوں کو دیکھوں. ایکسکیوز می مسٹر ارسلان, ترپاٹھی نے شکار اپنی بیٹی کو سونپتے ہوئے اس کی اہمیت سے بھی آگاہ کر دیا تھا. کیسے ہیں آپ؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. بھائی میں تو بہت سوشل ہوں, یہاں ہر جگہ آتی جاتی ہوں. مجھے تو پاکستانی نوجوانوں سے مل کر بہت آنند ہوتا ہے. اتنے براڈ مائنڈڈ ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. آپ تو خاصے مشہور آدمی ہیں, آیا کیجیے نا کبھی کبھی ہمارے یہاں. آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی होगी। सफा नंबर 122। कांता उर्दू ऐसी शानदार बोल रही थी कि इस पर भारतीय नारी होने का गुमान भी नहीं गुजरता था। अरसलान को अपने साथ लिए वो एक कोने में सोफे पर बैठ के उससे बातें करने लगी। इसने अरसलान से बातों बातों में इनकी तंजीम के मुतालिक बहुत ही ऐसी बातों का पता भी चला लिया था जो कभी अरसलान के जहन में ही नहीं रही थी। कांता इस तरह इसके साथ चिपक कर बैठी थी कि अरसलान खुद को रांझे अंतर महसूस करने लगा था। उसने बड़े नामहसूस अंदाज में अरसलान की ऐसी ऐसी खूबियां तलाश की थी कि उसे अपनी शख्सियत VIP महसूस होने लगी थी। वो ना रुकने वाले रिकॉर्ड की तरह कांता के सामने बजने लगा था। कांता के इसरार पर उसने कांता के साथ बेयर शेयर की थी और आइंदा भी उससे मिलने का वादा किया था। कांता ने उसे बताया था कि उसने मकामी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में फ्रेंच जबान में दाखिला ले रखा है जहां वो दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। उसने अरसलान को कहा था कि कभी उसे भारत की सैर करने की ख्वाहिश हो तो बिला तकल्लुफ उसे बताए, बल्कि उसने सर्दियों की छुट्टियां भारत में गुजारने की उसे बाकायदा दावत दे डाली थी। डिनर के आगाज तक वो उसे चिपकी रही। दोनों ने पाकिस्तान और भारत की स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर जी भर के बातें की थी। इसी दौरान कांता बहाने बहाने से उसे अपने जिस्म के सारे असरूर इसरारो रमूज से आगाह कर दिया था। अरसलान ये बात नोट ना कर सका कि सिया शीशों की ऐनक वाले एक दरमियानी उम्र के पाकिस्तानी ने इस पर मुसलसल नजरें जमा रखी थी। जब वो तरपाटी से बातें कर रहा था तो ये शख्स उनकी तरफ पीछ किए बजाय म्यूजिक से लुत्फ अंदोज होते हुए उनकी बातें सुन रहा था। कांता के कुर्ब ने उस पर ऐसी मदहोशी तारी की थी कि वो इस शख्स के बार बार अपने नजदीक किसी बहाने ठहर कर बातें सुनने की कोशिश को बिल्कुल नजरअंदाज कर गया। मलिक साहब इस दौरान सुपर ताकतों के सफीर और उनकी बेगमात और सिक्योरिटियों से मुजाफर गुफ्तगु फरमाते रहे। डिनर पर उन्होंने अरसलान से छुटते ही दरियाफ्त किया था, कैसा रहा प्रोग्राम? सफा नंबर 123। सर जी मजा आ गया, बड़े एडवांस लोग हैं, अरसलान ने नदीदे बच्चों की तरह हवसनाक लहजे में कहा। बेटा अभी तुमने देखा ही क्या है, इन लोगों से दोस्ती बड़ा फायदेमंद होती है। किसी अजीज दोस्त को वीजे की जरूरत पड़ जाती है, बंदा कभी कभी खुद भी मौज मेला कर लेता है। मलिक ने होठों पर जबान फेर कर बाई आंख दबाई। उस वक्त वो तीसरे दर्जे का लफंगा दिखाई दे रहा था। डिनर के दौरान भी कांता इसके गिर्द मंडलाती रही। उसने कई चीजें अपने हाथ से अरसलान की प्लेट में रखी थी और रुखसत होने पर एक मरतबा फिर इसे दोबारा मिलने का वादा भी लिया था। तरपाटी उन्हें रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आया था। चौधरी गुलाम रसूल को इंस्पेक्टर अकरब ने बताया था कि लवाइकिन खौफजदा हैं। उन्हें धमकी तो किसी ने नहीं दी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर उन्होंने अपनी हदूद से तजावुज किया तो ना जाने उन पर क्या कयामत गुजर जाए। दोनों घरानों को मलिक साहब की तरफ से कुछ माली इमदाद का वादा भी किया गया था। मलिक साहब ने दोनों को हिदायत कर रखी थी कि उनकी इजाजत के बगैर ना तो वो कोई बयान देंगे ना ही किसी से मिलने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मलिक साहब इस केस से अलग हो जाएंगे, फिर सारी जिंदगी उनके बेटे उन्हें वापस नहीं मिल सकेंगे। अरसलान इसके गैंग के दूसरे लोगों से मुतलिक भी उसने सारी रिपोर्ट DSP साहब के सामने रख दी थी। वेल डन, शाबाश, अपना काम जारी रखो, मैं तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाने दूंगा, चौधरी ने तहसीन आमेज नजरों से इसकी तरफ देखते हुए कहा। अब इसे अमली मैदान में खुद उतरना था। अचानक इंटरकॉम की घंटी बजी। उसे इंडियन डेस्क वाले JD ने अपने कमरे में चाय पीने के लिए बुलाया था। ये मामूल की बात थी, लेकिन आज ना जाने क्यों चौधरी साहब का माथा थिनका। सफा नंबर 124। वो अमूमन अपने काम से काम रखते थे क्योंकि एजेंसी के लोगों से भी उनके ज्यादा रवाबित कायम नहीं हुए थे। उन्होंने जहनी तौर पर खुद को अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट का ही आदमी समझा हुआ था। आपका इंस्पेक्टर इनकलाबी तलबा के जनरल सेक्रेटरी अरसलान को आजकल चेक कर रहे हैं, GD साहब ने जल्दी मतलब की गुफ्तगु पर आते हुए कहा। जी, मैं आजकल नौजवानों के अफवाह वाले केस पर काम कर रहा हूँ और ये हमारे बड़े काम का लड़का है, चौधरी ने चौंके बगैर कहा। हमारे भी बहुत काम का लड़का है, दोनों मिलकर काम चला लेते हैं क्योंकि आप हमारी टीम में अभी अभी शामिल हुए हैं, इसलिए आपका एहतराम तो हमारे लिए लाजिम है। JD साहब काफी रोशन दिमाग थे। शुक्रिया जनाब, जैसे आपका हुक्म। आप मेरे AD से मिलकर ऑपरेशन डिस्कस कर लें। थोड़ी देर बाद वो लोग आपस में मीटिंग करके अगला लहाई अमल तरतीब दे रहे थे। दोनों ने अपने अपने दायरे कार में रहकर अरसलान को इस्तेमाल किया था। चौधरी ने किसी को अंदर के हालात की भिनक भी नहीं पढ़ने दी थी। वो थे मामूल की कार्रवाई के मुताबिक डील कर रहा था और एजेंसी के बाकी लोग यही समझ रहे थे कि चौधरी गुलाम रसूल को चूंकि ये पहला अहम केस मिला है इसलिए वो कुछ कर दिखाना चाहता है। चूंकि नवा पुराना है, जल्दी इसका सारा शौक उतर जाएगा, फिर वो उनकी तरह खलीफा बनकर ऑफिस तक महदूद होकर रह जाएगा। अगले रोज उन्होंने मिलकर कार्रवाई का आगाज करना था। अरसलान हसबे मामूल सुबह देर गए सोकर उठा था। उसने मामूल के मुताबिक नाश्ता किया और फिर मलिक साहब की तरफ जाने के लिए तैयार होने लगा। अभी उसने कपड़े तब्दील ही किए थे जब दरवाजे की तलाई घंटी बजी। आ गए साले सुबह सुबह, ना जाने कम वक्तों को रात को नींद भी आती है या नहीं। उसकी दानत में ये इसके दोस्त थे जो सुबह ही उसे लेने आ गए थे। सफा नंबर 125। बड़बड़ाते हुए उसने दरवाजा खोला और दो अजनबी चेहरों पर नजर पड़ते ही हैरान रह गया। कौन हो तुम? उसने आने वालों से अपने मामूल के लहजे में दरियाफ्त किया। अगली कोई बात कहने से पहले इस बात का ख्याल रखना कि हमारे 15 साथियों ने इस फ्लैट को घेरे में ले रखा है। 9 वार्डों में से एक ने उसे उंगली के इशारे से फ्लैट के सामने वाले ग्राउंड के कोने में खड़ी जीप की तरफ इशारा किया। जीप से एक शख्स ने हाथ हिलाकर उन्हें एहसास दिलाया था कि वो उनके साथ हैं। लेकिन आप हैं कौन? हालात की नजाकत को समझते हुए अरसलान ने अपना लहजा तब्दील कर लिया था। हमारा ताल्लुक सिक्योरिटी से, हम तुम्हारे साथ दोस्ती करने आए हैं। दोस्तों के साथ ऐसी बातें नहीं की जाती। आओ अंदर बैठते हैं, इत्मीनान से बात कर लेंगे। इस मरतबा दूसरे ने जवाब दिया। दोनों अंदर दाखिल हो गए। किस एजेंसी से ताल्लुक है आपका? अरसलान ने दरियाफ्त किया। ISI से। उन्होंने अपनी तरबियत के मुताबिक झूठ बोलकर गलत एजेंसी बता दी। अगर आप मुनासिब समझे तो हम किसी और जगह बैठकर बात कर लें। यहाँ आपके दोस्तों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 9 वार्दों में से एक ने, जो चौथे गुलाम रसूल था, बड़े मुअद्दब लहजे में कहा। ठीक है, अरसलान ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। दोनों की मैत में वो नजदीकी एक छोटे से रेस्तरां में चला गया था। इसने देख लिया था कि जीप इनके साथ ही रिंगती हुई होटल के सामने सड़क के किनारे आकर ठहर गई थी। दोनों ने इसे भारतीय सफारतखाने की दावत और अख्तर जावेद के कत्ल से मुतालिक सवाल शुरू कर दिए थे। अरसलान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इस बात का एहसास उन्होंने अरसलान को करार दिला दिया था कि उनके मामले में मलिक साहब इसके काम नहीं आ सकेंगे। सफा नंबर 126। हमारा कुछ ऑन दी रिकॉर्ड तो होता नहीं, ना ही हम पुलिस वाले हैं। तुम्हें इस तरह गायब किया जाएगा कि खुद तुम्हारे फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा। तुम कहाँ हो? तुम जानते हो भारतीय सिफारतकारों से ताल्लुकात कायम करने वाले आम सिविलियन के लिए कितना बड़ा जुर्म है। इंस्पेक्टर खुर्शीद ने इसके पांव उखाड़े। लेकिन मैंने किससे ताल्लुकात कायम किए हैं? अरसलान घबरा गया। अच्छा जी, अरसलान साहब, वो कांता देवी, क्या आपकी फिक्र अधूरा छोड़कर वो मुस्कुराया। अरसलान ने भी जबरदस्ती मुस्कुरा कर खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। देखो बरादरी अजीज, हम तुम्हारे भाई हैं और तुम भी हमारी तरह पाकिस्तानी मुसलमान हो। अगर हमारी थोड़ी सी मदद करोगे तो हम भी बहुत काम आने वाले बंदे हैं। मलिक साहब से ज्यादा तुम्हारे काम आ सकते हैं। चौथे गुलाम रसूल ने फिर बिलाखिर दोस्ती की पेशकश कर दी। वो मारा, अरसलान ने दिल ही दिल में सोचा, ये सिक्योरिटी वाले अगर इनके दोस्त बन जाएं तो बहुत से मामलों में वो मलिक का मोहताज नहीं रहेगा। वो जानता था कि इंटेलिजेंस वाले अपने मौजों की बड़ी मौज करवाते हैं और पुलिस तो उनकी तरफ देखते हुए घबराती है। फिर वो इन लोगों के जरिए अख्तर और जावेद के मामले में डिस इन्फॉर्मेशन को गलत रुख पर डाल दे। लेकिन गलत क्यों? वो क्यों ना मलिक साहब की तरफ तोपों का रुख फेर दे? इस तरह नजमा मलिक पर भी हाथ साफ कर सकेगी और बहुत कुछ। हाँ, जाहिर है ये लोग उसे भारत सिफारतखाने में जाने से तो नहीं रोकेंगे, क्योंकि इसके जाने से ही उनका काम चलेगा। इस तरह कांता भी, वो दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि अगर आपने कभी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो मैं बहुत कुछ कर गुजरूंगा। उसने डरते डरते उन्हें धमकी दे दी। सफा नंबर 127। अरसलान साहब, इसकी नौबत कभी नहीं आएगी, हम दोस्तों के दोस्त हैं। दोनों ने बारी बारी इसे गर्मजोशी से मुजाफा किया। मुझे क्या करना होगा? अरसलान ने दरियाफ्त किया। कुछ नहीं, अपने मामूल की जिंदगी गुजारें, कांता देवी से राब्ता रखें, मलिक साहब से ताल्लुकात बनाए रखें, आंखें और कान खुले रखना, और बस हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। चौधरी ने जवाब दिया। आपसे राब्ता कैसे होगा? अरसलान ने कुरेदा। इसकी तुम फिक्र ना करो, जब हम मुनासिब समझेंगे मिल लिया करेंगे, जवाब मिला। चाय स्नैक इन लोगों ने खुद मंगवाए थे, उसका बिल भी अपनी जेब से अदा किया था। अरसलान ने पहली मुलाकात में उनके मुतल्लिक कोई बुरा तासर कायम नहीं किया था। इनमें से एक तो रुखसत हो गया था जबकि चौधरी के पास मौजूद रहा। अब वो दोनों नजदीकी ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। एक कोने में मौजूद बेंच पर वो बैठ गए। इधर उधर की बातें करने के बाद अचानक ही चौधरी ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें अख्तर और जावेद वाले वाक्य का तो इल्म होगा ही। चौधरी ने तीर हवा में चलाया था लेकिन लगा है निशाने पर। अरसलान के चेहरे का रंग फक हो गया। क्या मतलब है आपका? इसने खुद को संभाला। अरसलान साहब, ऐसी कोई बात नहीं, आप क्यों घबरा रहे हैं? मेरा मतलब था, आप आखिर तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं, मुल्क के खास आदमी, इसलिए मुमकिन है आपको अंदर की बात का इल्म हो। वैसे तो हम भी बहुत ही अंदर की बातें जानते हैं, लेकिन वक्त से पहले कुछ कहना ठीक मालूम नहीं होता। चौधरी ने इसके चेहरे पर नजरें जमाए अपनी एक आंख दबाते हुए कहा, अच्छा एक बात तो जरूर मानेंगे कि दोनों के अगवा का मुकदमा झूठा दर्ज करवाया गया है। सफा नंबर 128। चौधरी इसके चेहरे से एक लम्हे के लिए भी नजरें अलग करने को तैयार नहीं था। हाँ आपका अंदाजा सही है, उसने मुर्दा सी आवाज निकाली। शाबाश, ये हुई ना बात, इसका मतलब है हम मुस्तकबिल में अच्छे दोस्त बन सकते हैं। चौधरी बड़ा घाघ शिकारी था। जरूर जरूर, अरसलान के असाबे ढीले पड़ने लगे थे। तुम्हारे ख्याल में सारे खेल के पीछे किसका जहन कार फरमा है? मलिक साहब का। जनाबे वाला वो बड़ा खतरनाक आदमी है, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अरसलान ने झट से कह दिया। कहाँ छुपा रखा है इसने इन दोनों को? चौधरी ने बेचैनी से दरियाफ्त किया। वह खुदा इसका मुझे इल्म नहीं, ना ही मुझे ये पता है कि उनके साथ क्या गुजरी, अरसलान ने कुछ ऐसे मासूमाना लहजे में कहा कि चौधरी भी धोखा खा गया। तुम किसी तरह ये पता लगा दो कि मलिक ने लड़कों को कहाँ छुपा रखा है, फिर देख लेना कि हम तुम्हारे मलिक का कुछ बिगाड़ सकते हैं या नहीं। जी मैं कोशिश करूंगा, अरसलान चाहता था ये मुसीबत उठकर चली ही जाए। हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर याद करना, चौधरी ने कहा। हालांकि वो भी जानता था कि अरसलान अगर उन्हें याद भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, पहली मुलाकात में उन्होंने उसे कोई रास्ता नंबर ही नहीं दिया था। इन लोगों से रुखसत होकर वो सीधा अपने फ्लैट पर आया, बिस्तर पर गिर कर लंबे लंबे सांस लेने लगा। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि इस मुलाकात का जिक्र मलिक से करे या ना करे। अगर ये लोग अख्तर और जावेद के केस पर काम कर रहे थे तो उनकी तफ्तीश को गलत रास्ते पर डालने के लिए अरसलान का इनके साथ रहना जरूरी था। सफा नंबर 129। लेकिन कहीं इसके अपने गले में तो फंदा नहीं लगाया जा रहा। मुश्किल तो ये थी कि वो किसी से मशवरा भी नहीं कर सकता था। बहुत सोच सोच कर बिलाखिर इसने नजमा बेगम से मुशावरत का फैसला कर लिया। वही एक ऐसी हस्ती थी जिसे कुछ रहनुमाई मिल सकती थी। ये सोचकर वो कदरे मुतमईन हो गया। अभी वो उठकर खड़ा ही हुआ था जब अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ मिसेस मलिक इससे मुखातिब थी। उसका दिल चाहा कि फौरन मिसेस मलिक को ताजा हादसे की खबर दे, लेकिन अचानक ही इसने अपना फैसला बदल दिया। अगर इन लोगों का ताल्लुक इंटेलिजेंस से है तो ऐन मुमकिन है वो उसका फोन भी बिक कर रहे हों और लेने के देने पड़ जाए। इसने फोन पर मामूल के मुताबिक मिसेस मलिक की खैर की दरियाफ्त की, जिसने एक जरूरी काम से उसे घर पहुँचने को कहा था। फोन बंद करके वो मलिक विला की तरफ रवाना हो गया, जहाँ मिसेस मलिक इसकी मुंतजर थी। कहो कल की तकरीब कैसी रही, उसने छटते ही दरियाफ्त किया। जवाब में अरसलान ने विला का मुकास उसे सारी कहानी सुना दी। कामता से मुलाकात का जिक्र उसने सरसरी से अंदाज में किया था। मिसेस मलिक ने इसकी कहानी के खात्मे पर लंबी सांस ली, गोया खेल शुरू हो चुका है। खैर तुम फिक्र ना करो, बस जरा होशियारी से हालात को संभालना, मलिक बचकर नहीं जा सकता, अरसलान ने बेचैनी से कहा। मुझे क्या करना होगा, अरसलान ने बेचैनी से कहा। तुम बिल्कुल ना घबराना, ये वफाकी इंटेलिजेंस के लोग हैं और मलिक के खिलाफ मवाद इकट्ठा करके अपने आकाओं तक पहुंचाएंगे, ताकि जब मुज़ाकरात की मेज पर बैठें तो मलिक पर इनकी गिरफ्त मजबूत हो। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और इस सूबे से ज्यादा मजबूत अपोजिशन हुकूमत को मिलेगी। उनकी कोशिश होगी कि किसी भी तरह मलिक साहब इसकी कमाश के दो तीन लोगों को सूबाई लीग से तोड़कर अपने साथ मिला लें, ताकि हालात का पांसा उनके हक में पलट जाए। सफा नंबर 130। तुम उन्हें बड़े हिसाब किताब से इस बात की दो तीन शवाहिद फराहम कर दो कि दोनों नौजवानों के गायब होने में मलिक का हाथ नजर आए तो वो तुम्हारी जान छोड़ देंगे। जहां तक भारतीय सिफारत खाने वाली बात है, अभी एक आध मुलाकात उनके कहने पर कांता से कर लो। इसके बाद उन्हें कह देना कि कांता ने तुम्हें लिस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अरसलान दिल ही दिल में इसकी जहानत पर अशश कर उठा। जिस मसले ने उसे इतना परेशान कर रखा था, इसका सारा बोझ मिसेस मलिक ने चंद मिनट में उतार दिया था। शुक्रिया मिसेस मलिक, आप मेरी तवक्कात से बढ़कर जहीन और अजीम है, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। अरे नहीं, जब हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं तो फिर एक दूसरे के काम तो आना ही पड़ेगा। कभी तुम मेरी परेशानी दूर करोगे और कभी मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगी। हाँ, इन लोगों को हाथ में रखना, अगर इनके साथ ढंग से दोस्ती की जाए तो बहुत फायदा मंद साबित होते हैं। बहुत सी डिस इन्फॉर्मेशन इनके जरिए पास हो सकती है। मेरी बात समझ गए ना? मिसेस मलिक के होठों पर और आंखों में मुस्कुराहट नाच रही थी। इसने अरसलान को बतौर खास अपने फोन पर अहम गुफ्तगू करने से मना कर दिया था। बिल्कुल ही बंद ना कर देना, इन लोगों को खामखा शक पड़ जाएगा, इसने नसीहत के अंदाज में कहा। दोनों खाने की मेज पर इकट्ठे बैठे थे। इस दौरान वो अरसलान से कुरेद कुरेद कर यही दरियाफ्त करती रही कि तरपाठी और मलिक साहब के दरमियान क्या क्या बातें हुई थी। नाज़रीन वाला काम भी इलेक्शन से पहले ही हो जाए तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। एक तरफ मलिक वफाकी हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहा होगा, दूसरी तरफ हमारे हाथों। मैं देखूंगी कि इसके साथ फौलाद और सोने के कश्ते खा खा कर आखिर कितने मजबूत हो चुके हैं, उसने दांत पीसते हुए कहा। किताब का पार्ट नंबर 7 यहाँ मुकम्मल हुआ। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 8 में सुनिए।